गोप्या कृष्णे वनम् याते तम् अनुद्रुता कृष्णलीला प्रगायन्त्या निन्यो दुखेन वासरान्। फिर से पढ़ते हैं एक बार। श्री शुक उवाच गोप्या कृष्णे वनम याते तमा अनुद्रुत चेतसा कृष्ण लीला प्रगायन्त्यो निन्योर दुखेन वासरान्। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित से कहा, जब भी कृष्ण वन को जाते थे तो गोपियों के मन उन्हीं के पीछे भाग जाते थे और इस तरह युवतियां उनकी लीलाओं का गान करते हुए खिन्नता पूर्वक अपना दिन बिताती थी। है ना, तो गोपियां जो है वो इसी प्रकार के भजन गाती जैसे हम गा रहे थे, है ना, कि माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। वो मोहन जिन्होंने कामदेव को भी हरा दिया उनका स्मरण करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण वन की ओर गए हैं तो वन में उस समय एक राक्षस आ गया है। उस राक्षस का नाम है प्रलम्बासुर। प्रलम्बासुर, तो प्रलम्बासुर जब आया तो उसने अपना वेश बदल लिया, एक छोटे से बालक बन गया। राक्षस था तो उसका रूप वैसा ही है। तो वो जब आया तो उसने भगवान से बोला कि भाई कृष्ण मैं भी खेलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा क्या खेलोगे? तो उस समय रस्सा कशी का खेल चल रहा था, रस्सी खींच रहे थे। तो प्रलम्बासुर को बताया गया नियम क्या है कि जो हार जाएगी टीम वो अपने कंधे पे बिठा करके लेके जाएगी दूसरी टीम को। तो जोर लगाया गया और इधर कृष्ण की साइड की जो टीम थी वो जीत गई और फिर बलराम जो थे वो उधर किसी जीत गए हैं। तो अब उस साइड की टीम की सेवा थी कि वो उठा करके कंधे पे जाए। तो बलराम को उठा करके प्रलम्बासुर को मौका मिला। बलराम उसके कंधे पे थे, प्रलम्बासुर नीचे था और बलराम पीठ पर बैठे थे और वो चल रहे थे जंगल की ओर। तब जंगल की ओर जा रहे थे, जाते जाते प्रलम्बासुर ने अपना शरीर विशाल कर लिया, इतना विशाल कर लिया कि बलराम बहुत छोटे से दिखाई देने लगे। और वो उसने कहा मैं तुम्हें मार दूंगा, जल्दी से अपने भाई को पुकारो कृष्ण जिसको मैं मारने आया हूँ। तो उसने कृष्ण को बुलाया। बलराम बोलते मुझे जरूरत नहीं है, एक मुष्टिक प्रहार किया कान के ऊपर तो कान का पर्दा फट गया, सुनाई देना बंद हो गया उसको, है ना। और वमन उल्टी कर करके धड़ाम से नीचे गिरा। तो उसका एक मित्र आया था, उसने कहा कि अगर मान लो कृष्ण बलराम तुमसे बच भी गए तो मैं उनको जला के राख कर दूंगा। तो अग्नि दैत्य नाम का एक राक्षस था जो वहां आया था, तो अग्नि दैत्य ने पूरे वन में वृंदावन में आग लगा दी। तो कौन सा जंगल था जहां आग लगा दी, प्रश्न ये उठता है, है ना। जैसे सुनते हैं जंगल में आग लग गई, पेड़ों के घर्षण से आग लग गई, लेकिन आचार्य जीव गोस्वामी कहते हैं वो जंगल था मूंज का जंगल। मूंज जिससे खाट बुनी जाती है ना, मूंज, क्योंकि मूंज के जंगल में सरलता से आग लग जाती है। तो मूंज का जंगल था, एक ही बार में अग्नि दैत्य के वाह करते हुए पूरे उसमें आग लग गई और जितनी भी गाय बछड़े थे वो भी खेलते खेलते उसी जगह पर आ गए थे, है ना। तो यहाँ पर सबके सब डरे हुए, सारी गाय बिल्कुल मूंज के जंगल के बीच में फंस गई हैं और एक साइड में प्रलम्बासुर लीला चल रही है वध की और एक सगाई। तो प्रलम्बासुर वध जो हुआ ये स्थान है भांडेर वट, भांडेर वन जिसे कहते हैं। तो भांडेर वन जहाँ राधा कृष्ण का विवाह भी हुआ उसी स्थान पर प्रलम्बासुर का वध बलराम ने किया। टोटल 20 राक्षस 20 असुर वृंदावन में आए हैं, उनमें से 17 असुरों का वध कृष्ण ने किया, 3 असुरों का वध वृंदावन में बलराम ने किया। तो जो असुर आते हैं कृष्ण जिनका वध करते हैं वो असुर हमारे जीवन की कोई ना कोई प्रवृत्तियां होती हैं, है ना। तो ऐसा शास्त्रों में जैसा वर्णन है तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सुंदर वर्णन किया कि एक एक असुर हमारे जीवन में क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो कृष्ण के द्वारा मारे गए असुर हैं वो कृष्ण कथा सुनने से हमारे जीवन से चले जाते हैं। जैसे उदाहरण में पूतना, पूतना एक फॉल्स गुरु है ना, जो कि अपने आप को प्रमाणित करती है कि मैं सुंदर स्त्री हूँ लेकिन होती है वो वध करने वाली। ऐसे ही संसार में बहुत सारे लोग हैं जो गुरुजी बने हुए हैं, फॉल्स लोग हैं, और वो सही मायने में उनके अंदर की इच्छा लोगों को लूटना, धन को लूटना, संसार में मौज मस्ती करना और लोगों के धन से अपने जीवन को चलाना। तो ऐसे जो फॉल्स लोग हैं वो पूतना को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पूतना जो है, अगर हमारे जीवन में कोई इस प्रकार का अनर्थ हम भी मान ले, क्योंकि अगर हम देखें तो हम भी फॉल्स हैं। हम अपने आप को स्टैम्प करते हैं कि हम डिवोटीज हैं, लेकिन अंदर से हमें भी पता है हम कितने डिवोटी हैं। हमारा मन कई प्रकार के विकारों में फंसा हुआ है, व्यसनों में फंसा हुआ है, छोटी छोटी बातों पे क्रोध आ जाता है ना। जब हम ग्रुप में बैठ के चर्चा करते हैं तो हम बहुत अच्छे डिवोटी होते हैं, पर जब हम इंडिविजुअल होते हैं, हमारी साधना का आलस होता है, श्रवण के प्रति कोई रुचि नहीं होती है, क्रिटिसिज्म हमारे यहाँ भर भर के होता है, तो वी आर फॉल्स। तो हम पूतना ही है। तो अब ये जो पूतना रूपी अनर्थ हमारे हृदय में है, फॉल्स, ये जाएगा कैसे? कृष्ण कथा को सुनने से। तृणावत रूपी असुर कैसा है कि वो कृष्ण को उठा के हवा में ले जाता है। तो हम भी ऐसे ही कृष्ण के साथ जैसे जुड़ते हैं, हमें यश मिलता है कि हम डिवोटीज हैं, तो हमारे आसपास के लोग हमें पूजने लगते हैं, हमारे रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, तो हमारी ईगोज और हवा में चले जाती है। नॉर्मल आदमी कहता है भाई भक्तों से डील करना तो ना नॉर्मल आदमी से डील करने से भी ज्यादा खतरनाक है। तो सच बात यह है कि ईगो तृणव्रत असुर रूपी अनर्थ हमें घेर लेता है और हम ऊपर, तो कृष्ण क्या करते हैं फिर उसके अंदर गले में से उंगली लगाते हैं और धाम से नीचे आके गिरते हैं। तो इस प्रकार के जो असुर हैं, कृष्ण कथा सुनने से असुर चले जाएंगे। अगर हम सुनना चाहें पूतनावध लीला तो हमारा फॉल्स गुरु, फॉल्स डिवोटी का जो ये भाव है ये चला जाएगा। तृणव्रत की कथा सुनेंगे तो ईगो का जो भाव है फेक ये चला जाएगा। इस प्रकार से हर असुर के बारे में भक्ति विनोद ठाकुर ने वर्णन किया है अपने अपनी पुस्तक के अंदर, चैतन्य शिक्षामृत पुस्तक के अंदर। तो इस प्रकार से, लेकिन जो अनर्थ बलराम के साथ असुर सामने आए हैं वो असुर कृष्ण कथा सुनने से नहीं जाते हैं। तो इसीलिए तीन असुर बलराम मारते हैं, जैसे प्रलंबा असुर, फिर धेनु का असुर, इस तरह के असुर जो बलराम के द्वारा वध किए गए। तो ये असुर कैसे जाएंगे? ये असुर जाते हैं बाई एफर्ट्स। जितना ज्यादा हम एफोर्ट करेंगे उतने एफर्ट से ये असुर हमारे जीवन से जाएंगे। तो एफर्ट क्या करना है? जैसे लेजीनेस, लेजीनेस है, तो लेजीनेस अगर किसी के अंदर है तो प्रलंबा स्वरूपी अगर किसी के अंदर लेजीनेस है तो जाएगी कैसे? प्रलंबा स्वरूपी लेजीनेस का मतलब है वो ड्रैग करके ले जा रही है जंगल की ओर, आपको भक्ति से दूर ले जा रही है। आज मंदिर जाऊं नहीं जाऊं, आज कथा में जाऊं नहीं जाऊं, आज जब करूं नहीं करूं, खींच कर ले जा रही दूर। तो उसको कैसे बलराम ने मारा? एक मुष्टिक प्रहार से। कृष्ण ने नहीं मारा, किसने मारा? बलराम। तो बलराम ने मारा तो कृष्ण कथा सुनने से कैसे चला जाएगा? वो बलराम कथा सुनने से जाएगा या तो फिर कैसे जाए? बलराम क्योंकि आदि गुरु स्वरूप है, गुरु के रिप्रेजेंटेटिव है, गुरु रिप्रेजेंटेटिव है बलराम के। तो बलराम कहते हैं एफर्ट करने से जाएगा। तो एफर्ट क्या है? व्यक्ति को जैसे अगर सुबह उठने का आलस है या मंदिर जाने का आलस है या जप करने का आलस है तो उसको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं। कृष्ण रूपी असुर बड़ी दयालुता से चले जाते हैं, लेकिन ये जो बलराम वाले असुर है ना ये जाते नहीं, ये घेर के रखते। अच्छे अच्छे भक्तों के अंदर भी असुर मिल जाएंगे। तो ये असुर कैसे जाएंगे? एफर्ट्स, बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं। अधिक से अधिक हम अपने घर में चार्ट्स लगाएं, बोर्ड्स, व्हाइट बोर्ड्स रखें, उन बोर्ड्स पर लिखें और कुछ ना कुछ, और फिर इस प्रकार से ये असुर भागेंगे। रोज कुछ ना कुछ कोटेशन लिखें, मुझसे बड़ा धूर्त कोई नहीं है। यह सच बात है। हम लोग दूसरे को तो बोलते हैं इससे बड़ा धूर्त कोई नहीं है, लेकिन हम अपने आप को नहीं बोलते मुझसे बड़ा है ना। आचार्य क्या कहते हैं? कबीर कहते हैं, रहीम कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपनो तो मुझसे बुरा न कोई, है ना। भक्त खुद लहसुन प्याज खा रहे हैं, खुद नॉनवेज की पार्टियों में जा रहे हैं और तिलक लगा रखा है, पहुंच गए इस कौन में जी, हरे कृष्ण, हम भी भक्त हैं। ये फेक लोग, बहुत बुरी स्थिति है। एक नॉर्मल व्यक्ति से भी गलत स्थिति है उस भक्त की जो झूठा है। नॉर्मल व्यक्ति कम से कम अनजान है, हम तो जान करके कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, है ना। जप नहीं कर रहे, शास्त्र नहीं पढ़ रहे, गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं, सेवा के प्रति श्रद्धा नहीं, तो हम फेक है। तो ये एफर्ट्स, बहुत एफर्ट करेंगे तो वो जाएंगे।
दस दस बार अलार्म लगाओ, है ना, अगर सुबह जल्दी उठना है तो रात को जल्दी सो, कुछ भी करके कैसे भी करके नियम में कुछ ना कुछ गिरेंगे, फिर उठो, फिर चलो, कुछ ना कुछ करके फोर्स करो, यू कम आउट ऑफ दैट डीमन, आपके अंदर से वो अनर्थ चला जाए। बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। शास्त्र पढ़ने का मन नहीं है तो 10 ही मिनट पढ़ो, पर पढ़ो। जप करने का मन नहीं है तब भी जप करो। जैसे बच्चे का मन नहीं है दवाई खाने का, फिर भी बच्चा खाता है, ताकि उसकी माँ बाप जबरदस्ती खिलाते हैं कि गला ठीक हो, बच्चा ना ना करे। तो मन रूपी बच्चा ना 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 करेगा हर चीज के लिए, पर जबरदस्ती करो। इसलिए बोर्ड बनाओ बड़ा सा और लिखो उसके ऊपर, आज श्रवण नहीं किया क्रॉस, आज मैंने अपना अध्ययन नहीं किया क्रॉस, आज मैंने जप माला ध्यान से नहीं करे क्रॉस। कितने दिन क्रॉस लगाओगे? एक दिन तो गिल्टी होगा ना यार, कुछ तो कर ले। बाहर जाता है भक्त, बताता है अपने आप को, अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं प्रभु जी माता जी माता जी। तो हमें एफर्ट करना पड़ेगा, ऐसे विजुअल एफर्ट से हम हो सकता है बच जाए। या फिर दूसरा तरीका है, किसी ऐसे भक्त के साथ हम अपना दोस्ती कर लें जो व्यक्ति एक्सपर्ट हो भक्ति में, तो उसके साथ एंगल लगा लें, तो फिर हम भी उससे बाहर निकल जाएंगे। कभी कभी हम देखते हैं प्राय भक्त बोलते हैं, प्रभु जी आपके कारण हम इस प्रोग्राम में आ गए, वरना कथा रह जाती, आपके कारण हम यहाँ आ गए। तो ऐसे कारण बनाए हम, किसी ना किसी कारण से बनाए, है ना, तो वो कारण। वरना लोग सोचते हैं क्या जाना हाउस प्रोग्राम में, हाँ वही तो प्रभु जी बताएंगे, हरिनाम जपो, कथा पढ़ो, लेकिन बात वही है, लेकिन फोर्स बार बार चाहिए, बार बार चाहिए, निरंतर, है कि नहीं। घर के अंदर देखते हैं ड्रेन, जो नाली होती है उसमें कचरा फंस जाता है, अगर आप 4 दिन उसमें पानी ना डालो, 5वें दिन पानी जाना ही बंद हो जाएगा, फिर आप क्या करते हो, एक बाल्टी लेकर डालते हो उधर, तो फिर फोर्स से जब वो पानी जाता है, कचरा निकलता है, तो फिर पानी दोबारा अपने आप जाने लगता है। तो ये बीच बीच में ये फोर्स हमें चाहिए। तो इस प्रकार से वन में, मूज के वनों में आग लग गई थी चारों तरफ से, और गाय जोर जोर से पुकार रही थी, क्या कृष्णा, क्या बोल रही थी, कृष्णा। सोच के देखो, चारों तरफ आग लगी, आप ऐसे बोलोगे कृष्णा, म्यूजिकल कॉम्पिटिशन थोड़ी है, चारों तरफ आग लगी है। दावानल, दावानल मतलब होता है पेड़ों की जो आग, हम रोज सुबह गाते हैं, संसार दावानल लीड़ा लोका, संसार में भी आग लगी है चारों तरफ, यही आग है कि हम भगवान को भूल गए। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, कृष्ण को भूलकर भोग की कामना हम सब में उत्पन्न हो गई है। तो सभी के सब जो थी गाय पुकार रहे हैं कृष्ण को, वरना गाय ये भी बोल सकती थी, एक दूसरे को रंभा सकती थी, परंतु वो सभी गाय इस प्रकार बोल रही थी वृंदावन की, कि वो कृष्ण तक आवाज जा रही थी, कृष्ण कहीं और है और बलराम कहीं और है और गाय कहीं और है। कृष्ण ने जैसे ही सुना मेरी गौएं मुझे पुकार रही हैं, और उनको बचाने के लिए अपनी अपनी गायों को ग्वाल बाल भी उसी वन में प्रवेश कर गए, है ना, और चारों तरफ अग्नि बढ़ती चली जा रही है, और हीट, सोचो आप पेड़ों की हीट होगी तो कितना टेम्परेचर हो गया होगा, 2000-3000 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया होगा, ऐसा मतलब 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पानी का होता है, वन में 2000-3000 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए, एकदम सब कुछ पिघल जाता है। उस वन की आग को कहते हैं हेलीकॉप्टर से शावर करना पड़ता है तब भी नहीं बुझती है। संसार दावा नल लीड लोका, क्या है फिर, तरणाया कारुन घना घनत्वम, जब घने घने बादल आते हैं, बारिश करते, तभी वन की आग बच सकती है, वरना वन की आग बुझती नहीं है। अमेरिका जैसे देशों में भी कई बार आप न्यूज देखते हो, वन में आग लग गई है, पूरी की पूरी लग जाती है फायर ब्रिगेड, बट वो आग बुझती नहीं है। घना घनत्वम, सिर्फ बादल के पास शक्ति है आग बुझा सके। ऐसे ही गायों की आग जो वन में लगी थी, उसको बुझाने की शक्ति सिर्फ कृष्ण के पास है, और हमारे जीवन में जो आग लगी है उसको बुझाने की शक्ति सिर्फ गुरु के पास है, है ना। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ऐसे गुरु की हम शरण ग्रहण करते हैं, अन्यथा आग बुझने वाली नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। तो चारों तरफ जब पहुंचे तो सारे ग्वाल बाल वहां बैठे थे, और ग्वाल बाल जो है चिल्ला रहे थे, क्या कृष्णा, क्या चिल्ला रहे थे, कृष्णा। ऐसे रोज सुबह जब हम हरि नाम लें, तो इसी प्रगाढ़ता से प्रभुपाद ने कहा, ऐसे लोग कि आप दावानल में फंस गए हो। संसार दावानल भी औपचारिकता है, रोज मंगल आरती में संसार दावानल गा लिया, नाच लिए, फिर जब करने बैठे तो फिर नींद आ गई, क्योंकि दावानल भूल गए लगी हुई है। वो दावानल अगर याद रहेगी तो कभी आपको नींद नहीं आ सकती। आप सोचो घर में गीजर में आग लग जाए, स्पार्क और टुफ टुफ आवाज आ रही हो, आप जब कर लोगे ध्यान से, आप भागोगे तुरंत उसको आग बुझाने के लिए। चारों तरफ आग लगी है, रोज प्रभुपाद जी ने बोला, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कहते, रोज आग लगी है, लेकिन हम सो रहे हैं माला में, कल कर लेंगे ध्यान से, कल कर लेंगे। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, अपने खुद के लिए कह रहा हूँ, ध्यान नहीं लगता है माला में ना, आप सब तो ध्यान से करते हैं, फिर भी अच्छे साधक हैं, तो सोचो कि वो सारे के सारे ग्वाल बाल कृष्ण को पुकारे हैं, कैसे चारों तरफ आग लगी, इस भाव से पुकारना है। पुकारते ही कृष्ण वहां आए और आकर के कहते हैं, ग्वाल बालों और गैया सबको क्या बोलते हैं, बछड़ो तुम सब आंख बंद कर लो। अभी आपके साथ ऐसा हो जाए, सोचो इस कमरे में आग लग जाए, है ना, और हम आपको बोले कि डरिए मत, आंख बंद कर लीजिए, अभी भगवान सब सॉल्व कर दें। आप कहते हैं, प्रभु जी आप कराते रहो, हम तो इतने बड़े भक्त नहीं, हम जा रहे हैं, है ना, भागो भागो भागो, तुरंत छूट जाएगी उसको, आग को छोड़ो, एक चूहा यहाँ से गुजर जाए, हम सब खड़े हो जाएंगे कथा छोड़ करके। कि बहुत मुश्किल है कि हम ध्यान पूर्वक भगवान पर श्रद्धावान हो। एक बार बोलते ही भगवान से कृष्ण के, आंख बंद कर लो, सबने आंख बंद कर ली। बोले क्या करें आंख बंद करके, कृष्णा गर्मी से हम जल रहे हैं। कहा लेट जाओ जमीन में, तो जमीन में जैसे कभी बॉम्ब विस्फोट होता है तो जमीन में लेट जाते सोल्जर्स, ताकि चोट कम से कम लगे, है ना, क्योंकि हमेशा विस्फोट ऐसे होता है। तो अग्नि ऊपर को जा रही थी, लेट जाओ ताप लगना कम हो जाएगा, लेट गए सबके साथ आंख बंद करके। कृष्ण पर इतना विश्वास है, और कृष्ण तो इतनी चोरी करते, झूठ बोल रहे हैं वृंदावन लीलाओं में, चुपके से निकल जाते, कह रहे तुम मरो मैं निकल रहा हूं, तो फिर क्या करते, मर जाते। लेकिन कृष्ण पर इतना विश्वास, आधो श्रद्धा, इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है श्रद्धा भक्ति में, कि श्रद्धा है कि कृष्ण रक्षा करेंगे, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण मेरी अवश्य रक्षा करेंगे, है ना, हिले नहीं वहां से, वहीं के वहीं एकदम स्टैंड स्टिल लेट गए चुपचाप। तुरंत कृष्ण भगवान ने अपना मुंह खोला और देख लिया कि अग्निदित्य की करतूत है। भगवान ने मुंह खोला, भगवान भागवतम के पांचवें स्कंद में लिखते हैं कि ब्राह्मण का मुख और अग्नि का कुंड, यही दो मेरे मुख है जहां से मैं अवश्य ग्रहण करता हूं। या तो ब्राह्मण को कुछ प्रसाद खिलाओ तो उसके मुख से भगवान तक पहुंचता है, या तो फिर अग्नि कुंड में कुछ अवश्य डालो तो भगवान तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से दो ही रास्ते हैं। तो वो अग्नि क्या है, भगवान के मुख से ही तो निकली है, भगवान ने सारे दावानल जितना लगा था सबको पा लिया। अब दावानल पान कर लिया, ठीक है, भगवान ने दावानल पान कर लिया तो जले जले पेड़, सूखी सूखी घास और ना धुआं, कुछ तो होना चाहिए था। परंतु जब भगवान ने दावानल पान किया, यही कृष्ण की जो है ना भगवत्ता है, कृष्ण सब कुछ पान करने के बाद साथ साथ में जब छोड़ी सांस, तो उनकी सांस जो है ना उससे सारे वृक्ष फिर से हरे भरे हो गए, घास एकदम हरी भरी हो गई, और सारे ग्वाल बालों को कहते हैं चलो चलो उठो, क्या डर रहे हो, कहाँ लगी आग। सारे ग्वाल बाल बोले अरे कृष्ण हमें तो अब ठंडा ठंडा लग रहा है, इतनी शीतल मंद महीस अमीर बहने लग गई है, सब परिवर्तित कर दिया। तो कृष्ण ऐसे ही करते हैं, अगर भगवान को बचाना ही था तो डाला ही क्यों परेशानी में, ये भी तो प्रश्न उठ सकता है, डाला ही क्यों परेशानी में, बचाना ही था, पहले ही बोल देते अरे ग्वाल बालों उधर मत जाना, उधर अग्नि देते हैं, मैं जा रहा हूं, ऐसे भी तो कर सकते थे। परंतु भगवान इन लीलाओं को करते इसीलिए ताकि इनको सुनकर के सुनने वाले भक्तों की श्रद्धा में वृद्धि हो, उनके अनर्थ निवृत्त हो। अगर हम सुनेंगे नहीं लीला कि भगवान ऐसा भी कर सकते हैं कि परेशानी आने पर परेशानी से निकाल भी देते हैं और पूरी परिस्थिति परिवर्तित करके रख देते हैं, इसलिए परेशानी कभी भी आए तो घबराना नहीं है। तो ये चीज सिखाने के लिए भगवान ऐसी दावानल पान लीला, दावानल का पान हम खाते हैं ना, पान का पत्ते वाला पान, रस पान, और भगवान ने क्या किया, दावानल पूरी जंगल की आग का पान किया। तो सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक में कहते हैं, गोपाय कृष्ण वनम यते तमा अनुद्रुतम चेतसा कृष्ण लीला प्रगायंत्यम निन्यम दुखेन वासरन। सुखदेव गोस्वामी ने कहा जब कृष्ण वन को जाते थे, जब वन में गए तो दावानल लगाया, लेकिन साथ में दावानल, वो क्या दावानल था, उससे बड़ा दावानल तो गोपियों के हृदय में लगा हुआ था, है आग लगी हुई है। कृष्ण से जैसे ही चले जाते हैं ना काम करने में, गोपियां कहती हैं हमें अंगीठी के पास ठंडक का एहसास होता है, अंगीठी में इतनी गर्मी निकलती, चूल्हे के पास ठंडक लगती, क्यों, शरीर इतना गर्म हो रहा है, इतना गर्म हो रहा है, कृष्ण विरह में। और ये हम देख चुके हैं
कि जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन नहीं कर पाते हैं तो अलारनाथ में जाते हैं, तो शरीर में कृष्ण का विरह गोपी भाव इतना उत्तम है कि उनके विरह से शरीर पिघलने का टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर आ जाता है कि जिस शिला पे लेटते हैं वो शिला पिघल जाती है ना। ये कारण देखो, ये भक्त की स्थिति होनी चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कहते हैं कि जब वन की ओर चले जाते थे कृष्णा, तो उस समय गोपियों के हृदय में भी दावानल लग जाता था। दो दावानल लगे हुए हैं, एक इधर एक इधर। इधर का दावानल तो पान कर लिया है, परंतु कृष्ण इस दावानल के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो गोपियां बहुत इंतजार करती हैं कि रात्रि में आके कृष्ण के साथ हम क्रीड़ा करेंगे, रास करेंगे। और पूरा दिन जो है वो ग्वाय चराने के लिए गए हैं, ग्वालों के साथ गए हैं। तो घर की गोपियां स्थिति में है कौन सी में, जहां दावन लगा हुआ है। तो गोपियां इस अध्याय के अंदर जो कि 35वां अध्याय है, इसमें गोपी गीत के नाम से, एक गोपी गीत तो हम गाते हैं जयति ते दिकम, एक ये गोपी गीत है जो कि 35वें अध्याय में दिया गया है, कृष्ण के वन विहार के समय गोपियों द्वारा कृष्ण का गायन। तो अपने को ठंडा करने के लिए इस विरह भाव को गोपियां एक गायन करती हैं। क्या गायन करती हैं? भगवान से कृष्ण की बांसुरी के बारे में, वेणु के बारे में गायन करते हैं। तो आप एक तो आपने सुना था वेणु गीत, उसमें वेणु गायन कर रही है, इसमें गोपियां वेणु का गायन कर रही है। तो ये गोपी गीत है। तो गोपियां कहती हैं, जब मुकुंद अपने होठों पर रखी बांसुरी के छेदों को अपनी सुकुमार उंगलियों से बंद करके उसे बजाते हैं, तो वे अपने बाएं गाल को अपनी बाईं बांह पर रखकर अपनी बोहों को नचाने लगते हैं। कितने ध्यान से देख रही हैं कि बाएं गाल को, अभी कोई फ्लूट बजाएगा कैसे बजाएगा ऐसे ना, तो बाएं गाल को बाएं कंधे पे रख करके मुस्कान से और बोहों को नचाते हैं ऐसे, है ना। तो ये याद करती हैं वो गोपियां। तो ऐसा नहीं है जो गोपी गीत आप ये सुनेंगे कि ये सीक्वेंस में है, अलग अलग समय पर अलग अलग गोपियां अलग अलग भाव व्यक्त कर रही हैं, पर सुखदेव गोस्वामी सारे भाव एकत्रित करके इस अध्याय में श्रवण करा रहे हैं। तो वो कहती है, एक गोपी कहती, मैंने तो ये देखा है कि ऐसे लगते हैं बांसुरी को, है ना। और इस स्थिति को देखने के लिए सिद्धों समेत, जो सिद्ध लोक है हमारे ऊपर, कई लोक हैं, गंधर्व लोक, सिद्ध लोक, चारण लोक, तो ऐसे सिद्ध समेत विचरण कर रही सिद्ध पत्नियां भी चकित उठती हैं। अरे इतनी मुस्कान से जो प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, ये तो सिद्धि पाने के पास भी नहीं होता। इसीलिए भागवत चैतन्य चरितामृत ये कहती है कि जो लोग सिद्धि प्राप्त करने के कामी है ना, कई बार इसे मन में आता है, काश हम कहां लग गए हरि नाम लेने में, कुछ नहीं हो रहा, काश हमें भी कोई सिद्धि मिल जाए, अड़ीमा महिमा लघिमा, यहाँ से हाथ बढ़ाए इंडियन ओवरसीज बैंक खाते में, वहां से पैसा निकाल लें, चार पांच डाल दें गड्डी, हो गया दो तीन हफ्ते का काम, फिर निकाल लेंगे दूसरे दिन, फिर भजन करेंगे। तो कभी कभी भक्तों के मन में भी भाव आता है कि सिद्धि मिल जाए कोई, है ना। और हाँ, जन्माष्टमी के समय मन करता है 1 करोड़ रुपया हमें फंड रेज ना करना पड़े, हम तो क्या करें, जा करके किसी से ले लें। तो इस प्रकार से, लेकिन ये जो सिद्धि है, ये सिद्धि की कामना भी व्यक्ति के लिए भावपूर्ण नहीं है। क्या कहते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, भुक्ति भोगने वाली इच्छा, मैं संसार को भोगना चाहता हूँ, एक इच्छा ये होती है भोगने की। भुक्ति एक होती है मुक्ति, मैं संसार से मुक्त होना चाहता हूँ। भुक्ति मुक्ति एक होती है सिद्धि, मैं सिद्धि चाहता हूँ। बड़े सिद्ध पुरुष मिलते हैं, बाबा जी लोग हैं, सिद्ध हैं, हिमालय में बैठे हैं, उड़ जाते हैं हवा में। एक थे नारायण दत्त श्रीमाली, वो जमीन से इतना ऊंचा उड़ जाते थे और उनके कई फॉलोअर्स हैं, है ना, उनकी परंपरा है पूरी श्रीमाली परंपरा, तो वो राजस्थान के थे। तो इस प्रकार से हवा में उड़ जाना, एक थे नारायण दत्त श्रीमाली के अंदर और भी कुछ सिद्धियां थी, जैसे एक बार वो अपनी ग्रंथ में वर्णन करते हैं कि एक शिष्य उनके पास आया और कहता है, महाराज जी मेरी पत्रिका देख करके बताइए। कहा, अरे पत्रिका, मेरा पंचांग तो मेरे घर रह गया है। तो उन्होंने कहा कि अरे घर तो आपका 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर अब पंचांग में व्यवस्था करता हूँ यहीं से। कहा, नहीं नहीं, मैं किसी और का पंचांग नहीं देखूंगा, मैं तो अपना ही पंचांग। कहा, लेकिन महाराज जी वो तो आप भूल गए। कहा, रुको 2 मिनट, तुम आंख बंद करो, मैं अभी आता हूँ। उन्होंने आंख बंद करके बिठाया और 5 मिनट बाद बोले, बोले खोलो आंख। तो उन्होंने आंख खोली तो देखा सामने पंचांग रखा था। तो जाकर के अपने घर से ले आए तुरंत, तेज गति से चलना, ये भी सिद्धि थी। लेकिन ये सिद्धि आपको सिद्ध लोक तक तो पहुंचा सकती है, लेकिन जन्म मृत्यु चक्र से कभी मुक्त नहीं करा सकते, ये भक्त कोई करा सकते हैं। इसलिए सिद्धि मुक्ति भुक्ति कामी सकल अशांत, हमेशा अशांत रहेंगे क्योंकि हमेशा टेंशन बनी रहेगी। वापस संसार में आएंगे, मान लो पुनर्जन्म हुआ एक सिद्ध पुरुष का, तो वो क्या व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसेगा? क्या वो दोबारा से अपनी सिद्धियां उसकी कंटिन्यू रहेंगी? जैसे मान लो इस जन्म में उसने बड़ी तपस्या करी, आग जलाकर बैठा रहा, हठ योगी था, सिद्धि प्राप्त करी, परंतु जब उसका दूसरा जन्म होगा उसकी पुरानी सिद्धियां समाप्त हो जाएंगी, उसके साथ कैरी नहीं होती। लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज है कि आज हमने जो कितना कर लिया वो अगले जन्म तो जाएगी, इसीलिए सिद्धि से उत्तम भक्ति है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतेव शांत। कृष्ण भक्त वो है जो निष्काम होता है, कोई कामना नहीं है, एक ही कामना है कृष्ण को प्रसन्न करना। जन्माष्टमी का दिन हो या कोई भी फेस्टिवल हो या कोई भी आयोजन हो हमारे घर में, हमारा एक ही कामना होनी चाहिए, कृष्ण आप कैसे प्रसन्न होंगे, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सभी की सभी सिद्ध पत्नियां जो थी सिद्ध लोक की, सिद्ध लोगों की, उनकी पत्नियों के जब एक बांसुरी की ध्वनि निकलती, गोपी कहती है, तो उनका शरीर जो है ना एकदम बोलते हैं ना शरीर ढीला पड़ जाता है, सोच करके कंपन हो जाता है उनके शरीर में, और उनको सुधी नहीं रहती है सिद्ध चारण की पत्नियों को कि अरे हम करें तो करें क्या, इनकी ध्वनि पर इनकी बांसुरी पर हम विमोहित हो गए, पूरी की पूरी इल्यूजन क्रिएट हो गया, मतलब मन कर रहा है अपने पति की ओर देख ही नहीं रहे हैं, कृष्ण का आकर्षण इतना गहरा, कहां सिद्ध लोक और कहां वृंदावन। कहते हैं इसमें भगवान से कृष्ण जब फिर बांसुरी बजाकर मुस्कुराते हैं तो उसका कंपैरिजन, उसका क्या कहते हैं कंपैरिजन को हिंदी में, तुलना, भगवान श्री कृष्ण की मुस्कान की तुलना नेकलेस हार से की गई है, है ना। तो भगवान ऐसे करके मुस्कुराते हैं तो स्माइल जो है उससे एक ऐसी शैडो पड़ रही है, ऐसा लग रहा है सुनहरे हार पहने हुए हैं भगवान ने। हम मुस्कुराते हैं तो क्या होता है, सुनहरे हार आते हैं, हम मुस्कुराते हैं तो लार आती है ना, और कई बार स्मेल भी आती है, ब्रश ठीक से नहीं किया हो तो, या दांतों के अंदर कुछ कचड़ा फंसा हुआ दिखता है, ट्विक सही से नहीं लगाया है तो फिर उससे होता है। लेकिन कृष्ण कैसे हैं, उनकी स्माल मुस्कान से गोपियां कहती हैं हार समान दर्शन हो रहा है, और कहती हैं कि जब भगवान से कृष्ण की बांसुरी को जानवर भी सुनते थे तो जानवर ऐसे हो जाते थे, ऐसे जैसे चारण कर रहे हैं और कैसे कृष्ण ने फ्लूट बजाई तो ना स्वेलो करेंगे ना चबाएंगे, ना ही जो खाना चबाएंगे, तो जो जानवर एक ऐसा है कुछ भी छोड़ दो वो कभी चबाना नहीं छोड़ता, उसकी चबाना, कभी कभी लोग च्युइंगम खाते हैं ना तो लोग बोलते हैं अरे च्युइंगम छोड़ो क्या जानवर की तरह चुगाली कर रहे हो, है ना, ऐसे बोलते हैं। बस आ रही हो और गाय रस्ते पे बैठी हो, आप हॉर्न बजाओ वो चबाती हो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप ज्यादा हॉर्न बजाओ टी टी तो ऐसे पलट के देखेंगे क्या है, फिर मुंह इधर करके आपको लगेगा उठेगी कब, उतर के धक्का मारो साइड करो तब जाकर के हटते हैं। लेकिन कृष्ण की बांसुरी कैसी है, वो गाय वो जानवर वहां के मृग आदि जितने भी हैं सब चबाते चबाते रुक जाते हैं, स्टैंड स्टिल, और इवन स्वेलो करना भी बंद कर देते हैं। कृष्ण कथा ऐसी है, हम हैं ऐसे, कृष्ण कथा चल रही हो, मंदिर में अभिषेक चल रहा हो, भक्त प्रसाद की लाइन खुल जाए तो दौड़ कर धर प्रसाद पाओ आगे निकलो भैया, कहां झंझट में फंस गया, कि ये आकर्षण बहुत मुश्किल से उत्पन्न होता है। कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण है, कभी कभी गोपी कहती है कि एक पहलवान के समान स्वरूप बनाते हैं, पत्ते बांध लेते हैं, शरीर पे मालिश करा लेते हैं। अब सुकुमार है, कोई बड़े पहलवान नहीं कि बलिष्ठ भुजाएं हैं, परंतु सुकुमार भी पतले दुबले से भगवान श्री कृष्ण लेकिन एक पहलवान के जैसे अपना दर्शन बना करके बैठ जाते हैं। उसको देख करके जो है ना सारी गोपियां जो है स्तब्ध रह जाती हैं कि अरे कृष्ण इतने शक्तिशाली हैं, हम तो इनको छोटा सा बालक समझ रहे थे। तो गोपी कहती हैं कि भगवान से कृष्ण जब अपना ये पहलवान रूपी वेश बनाते हैं तो उस समय जब बांसुरी तब भी रहती है उनके पास, क्योंकि वृंदावन में बांसुरी हमेशा रही है, तो बांसुरी जब बजाते हैं तो यहां वर्णन आया है कि जो नदियां हैं यमुना जो कुंड आदि हैं जो बह रहे थे वो बहना बंद कर देते हैं। सोच सकते हैं आप, फ्रोजन रिवर मतलब टेम्परेचर हाई हो तो भी ऊपर की लेयर फ्रोज होती है, नीचे फिर भी बहरी होती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी सुनकर के यमुना नदी, पुलिंद आदि कुंड वो है ना क्या कर देते, बहना बंद कर देते, फ्रोज हो जाते थे। ये स्थिति एक भक्त की है, फ्रोज हो जाए व्यक्ति कृष्ण कथा सुनकर के, फ्रीज एकदम ऐसा। लेकिन हम ऐसे हो नहीं पाते। लेकिन नदी है क्या, जड़ वस्तु है, लेकिन वो जड़ वस्तु में इतनी चेतना है कि कृष्ण कथा के प्रति आकर्षण है, कृष्ण के प्रति आकर्षण। और हम क्या है, चेतन वस्तु है, पर हम कृष्ण कथा के प्रति जड़ बने हुए हैं। कृष्ण कथा चल रही हो, कृष्ण का दर्शन हो, हम दो मिनट करते हैं फिर लोग अपनी फोटो खिंचाते रहते हैं भगवान के। अभी जन्माष्टमी में काफी सारे ऐसे डिपार्टमेंट बनेंगे जहां पर आएंगे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वाले लोग, फोटो ही खिंचाते रहेंगे भगवान के आगे। जहां देखो इतना बड़ा पंडाल लगाते हैं कि वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट वालों के लिए लगाते हैं, आओ फोटो खींचो, फोटो खींचते, फोटो फोटो फोटो, ना कोई सेवा, ना कोई कॉन्शियसनेस, ना कोई भाव। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बहुत उत्तम भाव, भगवान का प्राकट्य दिवस, ये सब स्मरण करना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि हम इस पर चर्चा करें। तो ये गोपियां ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, क्योंकि हृदय में दावानल लगा है, हृदय के अंदर गर्म ताप अग्नि जल रही है, इसलिए वो कृष्ण स्मरण कर रही है जिससे थोड़ा ठंडा हो जाए। आगे कहती हैं कि जो पेड़ हैं वो जब कृष्ण गौ चरण के लिए जाते हैं, पता है गोपी, वो ऐसे करके झुक जाते हैं, ऐसा लगता है कृष्ण पर अभिषेक कर रहे हैं अपने फलों का, और फल तोड़ने नहीं पड़ते हैं। जिस जगह से कृष्ण निकलते हैं, वृक्ष अपने पुष्पों को और अपने फलों को ऑफर करते हैं भगवान, अपने आप गिर जाते हैं। पका हुआ फल गिरता है ना, सब गिरा देते हैं अपने फल, कह रहे लो कृष्ण हमारा वाला खा, हमारा वाला खा, हमारा। तो इस प्रकार से वहां पर दृश्य बना हुआ है। आगे कहते हैं जो भंवरे हैं, बम्बल बीज जो भंवरे हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की तुलसी माला के चारों ओर घूम रहे हैं और एक अलग ध्वनि निकाल रहे हैं, घूम घूम घूम। तो ऐसा लग रहा है जैसे एक बहुत बड़े राजा वन की ओर जा रहे हैं वन चारण के लिए, और वहां पर राजा का वेलकम किया जा रहा होता है ना, टू तो इतने सारे भंवरे इकट्ठे होकर के कृष्ण पर और इस प्रकार की ध्वनि निकाल रहे हैं। और जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो ऐसा लगता है कृष्ण कह रहे हैं थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत सुंदर आपने मेरा वेलकम किया। तो ये सारी लीलाएं बड़े सूक्ष्म रूप से वृंदावन में चल रही हैं। तो अब अगर कोई व्यक्ति सोचे नहीं इतने गहराई से जैसे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, तो उसके लिए बड़ा सिंपल है, वन को गए, गाय ली, वापिस आ गए। नॉर्मल ग्वाला भी तो ये करता, कृष्ण कौन सा वो की है, इसीलिए कृष्ण को बड़ा साधारण समझते हैं। आप देखिए जितने पक्षी आदि हैं वो कृष्ण के वन में आते ही आरती उतार रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए। हम आरती उतारते हैं ना मनुष्य होकर के, वो पक्षी होकर के आरती उतार रहे हैं भगवान की, सारे पक्षी आरती उतारते हैं। और इतना इन्फ्लुएंस है भगवान की बांसुरी का कि जो बादल है वो कहते हैं ओ हमारा मित्र आ गया, क्योंकि जब ये प्रकट हुए थे तो घन 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 आवाज हो रही थी, इसीलिए उनका एक नाम पड़ गया घनश्याम। बड़ी जोर जोर से बादल गरज रहे थे, बादल कह रहे थे आज तो बड़ा खुशी का दिन है, हमारे नाम पर भी भगवान का नाम पड़ने वाला है घनश्याम। तो घनश्याम नाम पड़ा तो जो घन थे बादल, ये घनत्वम काले बादल हो गए और भर भर के क्या करने लगे, ड्रॉप्स गिरा रहे। ऐसा नहीं मूसलाधार वर्षा कर दी भिगा दिया, हल्की हल्की जैसे ना एक क्या कहते हैं उसको, बहुत छोटी छोटी सी बूंदें गिरती है ना, क्या बोलते हैं उसको, ड्रिजलिंग होती है ना, बहुत छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं भगवान श्री कृष्ण को आनंद देने का। ये नहीं भिगा रहे, उनको आनंद लग रहा है। कभी कभी हम जाते हैं किसी किसी पार्टी में तो स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं वो ड्रिजलिंग का भाव देने के लिए, सुगंध का भाव देने के लिए, वही भाव वहां पर बादल स्वयं भगवान की सेवा में लगा है। और कभी कभी जहां धूप हो जाती है और अधिक धूप होती है तो सारे ग्वाल बाल भागते हैं छाता लेकर, कृष्ण हम छाता पकड़ेंगे आपके सिर के ऊपर। तो है ना बादल कहता है अरे तुम हटाओ अपना, हटा सावन की घटा, हम लगाएंगे अपना छाता। तो काले बादल आ जाते हैं कृष्ण के ऊपर, चारों तरफ धूप है बस जहाँ कृष्ण खड़े हैं वहां बादल है। तो सारे ग्वाल बाल कहते हैं अजीब है भाई कि है ना इतने एरिया में जहाँ कृष्ण चलते हैं तो बादल पीछे पीछे चलते हैं छाता बन करके, मतलब कितना कनेक्शन है। इससे पता चल रहा है ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड नायक चल रहा है तो सारा ब्रह्मांड हिला हुआ है ना, कोई नॉर्मल वनचारण लीला नहीं है। कहते हैं यहाँ पर बहुत सुंदर एक शब्द आया है, तब सुतः सती, सुतः मतलब होता है पुत्र, और सती मतलब होती है सती माता, मतलब जो किसी और पुरुष का स्मरण नहीं करती अपने पति के अलावा। तो कहते हैं यहाँ पर कि अब इनका गुणगान गोपियां नहीं गा रही हैं, अब कौन गा रही हैं? तव सुतः सती। तव सुतः सती मतलब, तव मतलब ये, सुतः मतलब जिनके पुत्र है वो सती, तो कौन है? यशोदा माता। तो यहाँ पर अब यशोदा माता गुणगान कर रही है, इसका मतलब यशोदा माता और गोपियां जो हैं वो साथ में हैं। लेकिन कई कई ऐसे श्लोक आएंगे जिसमें यशोदा माता और सखियां अलग अलग हैं, जहां पर वो प्रेम की बातें करेंगी। तो ज्यादातर गोपियां यशोदा के सामने प्रेम की बातें नहीं करती हैं। तो कुछ श्लोकों में ऐसा आएगा, जैसे इस श्लोक में आया है कौन कौन भगवान के गुण गा रहे हैं, नंद भवन के अंदर, नंद गांव में। आपने देखा है नंद गांव में नंदेश्वर पर्वत पे चढ़ो तो वन, जो वन से जब भगवान कृष्ण आए हैं तो उनके लिए कौन कौन लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और कौन कौन लोग उनके लिए मतलब गाना गा रहे हैं, दर्शन करने आए हैं। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं शर्क सर्व परमेष्ठि पुरायोग, इसका मतलब है सर्व शक्र, शक्र मतलब है इंद्र आदि देवता, इनको संस्कृत में शक्र कहा गया है। इंद्र, अग्निदेव, चंद्रमा, वरुण, ये सारे के सारे अरुण, सब देवता शक्र। सोचो कितनी भीड़ लग गई होगी भगवान को देखने। जैसे ही यशोदा मैया ने गाना शुरू किया तब सुतः सती, जैसे ही गाना प्रारंभ की शक्र, और फिर दूसरा आया है सर्व, सर्व मतलब शिव, तो शिव के लोक के लोग आए हैं, शिव जी आए हैं, गणेश आए हैं, पार्वती हैं, नंदी हैं, सब गण आए हुए हैं दर्शन करने भगवान का। शक्र सर्व परमेष्ठी, परमेष्ठी कौन है? जिन्होंने इस संसार की सृष्टि की रचना करी है। परमेष्ठी कौन है? भगवान ब्रह्मा। तो ये जो जो ब्रह्मा जी हैं, ये परमेष्ठी हैं। चतुर्मुखी ब्रह्मा अपने चार मानस पुत्रों को लेकर भी आए हैं, सनत सनंदन कुमार को, नारद मुनि को भी लेकर आए हैं, अपनी पत्नी को भी लेकर आए हैं, शिव जी, इंद्र, ब्रह्मा और पूरे पूरी फैमिली के साथ आए हैं। कहा? नंद भवन में। क्या सुनने? तव सुतः सती। जैसे ही यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के यश को गाना प्रारंभ किया, तो यहां पर कहते हैं अगले श्लोक में, जैसे ही गोपियां भगवान श्री कृष्ण के बारे में, भगवान के बारे में ये भजन सुनती हैं, यशोदा मैया उनका इतना गुणगान कर रही हैं, तुरंत जो गोपियां थी उनके वस्त्र ढीले हो जाते हैं। और वस्त्र ढीले हो जाने का मतलब कि वो वस्त्रों को, जैसे कभी हम जाते हैं पार्टी में या कहीं पर भी तो हम अपने शरीर को टाइट करते हैं, मतलब कपड़ों को भी पूरा खींच करके बांधेंगे और ना पैंट शर्ट ठीक करेंगे या धोती कुर्ता टाइट करेंगे, ढीला नहीं। लेकिन घर में होते हैं तो हम ऐसे ही ढीले ढीले कपड़ों से घूमते रहते हैं। लेकिन गोपियां जो है वो यहाँ पर वर्णन आया है, कश्मलेन कवरम वसनम वा कुछ गतिम गमिताम न विदाम। जो जितनी भी गोपियां हैं इनके वस्त्र कैसे हैं, ढीले हो गए हैं भगवान श्री कृष्ण सुनकर उसी अवस्था में गुणगान करने के लिए भाग गए कि कृष्ण आ गए चलो। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो ये श्लोक है और वो जो दो पहले वाला श्लोक है, दोनों अलग अलग समय पर है, क्योंकि एक में सभी देवी देवता है और एक में सिर्फ गोपियां हैं, तो ये भेद हमको पता होना चाहिए। और कृष्ण जब चलते थे वनचारण के लिए तो उनके पैरों के जो शुभ चिन्ह हैं वो अंकित हो जाते हैं पृथ्वी पर। तो जो पृथ्वी पर अंकित होते हैं तो जो धरती माता है ना वो बड़ा बुरा बुरा बोलती है, किसको? गायों को। कहती है गाय जो है ना बड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। जब चलते हैं तो उनके चरण चिन्ह बनते हैं, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, पृथ्वी कहती है मुझ पर भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह बन रहे हैं। परंतु ये गाय जो लेके चलते हैं ना 9-9 लाख, इनके खुरों से क्या होता है वापस वो चिन्ह पुनः समाप्त हो जाते हैं। तो बड़ा उनको दोषारोपण करती है पृथ्वी को। तो इस प्रकार से वर्णन है। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहे हैं, ये आपको बहुत आनंद भी प्रदान करेगी। भगवान श्री कृष्ण जो है वो रोज 108 माला का जप करते हैं, तो ये भागवत में वर्णन है। तो 108 माला के मनके की माला करते हैं। कई लोग संसार में धोखाधड़ी करते हैं, मेडिटेशन बहुत सारे हैं, नाम क्या क्या लूं मैं लोगों के, ये फाउंडेशन वो फाउंडेशन और ये गुरुजी और वो गुरुजी, टीवी पर आ रहे हैं, लोग भी बच्चे देख रहे हैं मेडिटेशन। कृष्ण स्वयं ब्रह्मांड नायक होकर के 108 बीड्स की माला पे जप करते हैं। कैसे करते हैं उसका व्याख्यान भी इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने किया है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मणिधर कुचित आगन्यम गामालये, माला है फूलों की, मणियों की लड़ ले रखी है हाथ में, धारण किए गिनते हुए भगवान पहुंच जाते हैं वन में। जब गायों को वापस ले जाना है तो उस समय भगवान से कृष्ण टेर कदम नामक स्थान जो आपने देखा है वहां कदम के वृक्ष पे चढ़ करके क्या करते हैं, गायों को आवाज लगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की एक आवाज में गाय आ जाती हैं। तो कितनी गायें थी वहां पर, हाउ मेनी? 9 लाख। 9 लाख गायों को कैसे गिनेंगे भगवान? तो भगवान ने अपने 108 ट्रूप्स बनाए थे, 108 मतलब क्या कहते हैं ग्रुप्स को, ट्रूप्स को क्या कहते हैं उनको, ग्रुप्स को हिंदी में क्या कहेंगे, समूह बनाए हैं, 108 समूह बनाए हैं। और हर समूह को कैसे भगवान ने डिसाइड किया है, तो एक समूह है, 4 बेसिक समूह बनाए हैं, श्वेत, रक्त, पीत और काला। तो काला समूह है काली गायों का, एक श्वेत समूह है व्हाइट गायों का, एक रक्त समूह है लाल गायों का, और एक पीत समूह है पीले गायों का। और ये जो व्हाइट वाले हैं ये 25 है, 25 ग्रुप्स हैं, व्हाइट 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 व्हाइट, उन सबकी एक एक लीडर्स हैं। ऐसे ही रक्त कलर के 25 ट्रूप्स हैं, उनकी भी एक एक लीडर्स हैं। ब्लैक के भी जो है ना 25 ट्रूप है, और पीले के भी 25 ग्रुप समूह है। 25 25 25 के 4 ग्रुप हो गए तो कितने हो गए, 100। और तिलक लगाने वाली हैं, जिनके तिलक लगाती हैं, रक्त चंदन तिलक लगता है डेली, तो तिलक वाली अलग गाय है, जिनके मस्तक पर तिलक छप गया है, तो 4 समूह तिलक की गायों के। और 4 समूह हैं जिनकी मृदंग के जैसा मुंह है, मृदंग मुखी, मृदंग जैसा मुंह है, जिनके मुंह ही ढोल नगाड़े ऐसे जानवरों की अलग अलग, उनके मुंह के शेप अलग है, तो उनको एक ग्रुप में बांधा है भगवान। तो 4 मुंह के अनुसार, 4 तिलक के अनुसार, 25 पीले, 25 सफेद, 25 लाल, 25 काले, कितने हो गए, 108। तो एक मणि नीचे करते हैं 108 में से और फिर पुकारते हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है, 25 उप विभाग किए थे भगवान ने 100 रंग की गायों के, उसमें से मुख्य मुख्य गायों को वो आवाज लगाते हैं। तो जब श्वेत गायों को पुकारना प्रारंभ करते हैं, तुम पुकारते, हम नाम लेंगे गायों का, बोलिएगा साथ में, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे धवली, है ना, हे चंदनी, हे गंगा, और एक बड़ा मुख्य नाम है, क्या है, हे मुक्ता, yeah, it's written in Bhagavatam. So when I was hearing, I was thinking it's a gift for you, huh? So भगवान क्या कहते हैं, हे मुक्ता। तो फिर उस ग्रुप की गाय आती है वहां भगवान के पास, फिर कहते हैं, हे अरुणी, हे कुमकुमा, हे सरस्वती, तब ये लाल गाय आती है, फिर कहते हैं, हे श्यामलाम, हे धूमला, हे यमुना, तो एक यमुना नदी भी है और एक यमुना गायों का स्वरूप भी है। फिर एक अब आ जाती है काली गाय, फिर आती है पीली, हे पीता, हे पिंगला, हे हरितालिका, एक व्रत आता है ना हरितालिका व्रत, तो ये गायों का समूह भी हरितालिका। तो इस प्रकार से ये गाय आती हैं। फिर तिलक वाली गायों को बुलाते हैं, कहते हैं, हे चित्र तिलका, हे दीर्घ तिलका, हे तिर तिलका, हे लघु तिलका, ऐसे 4 समूह ये हैं। फिर उसमें मुख्य वाली आती है, हे मृदंग मुखी, हे शंख मुखी, हे सिंह मुखी, इस प्रकार से मुख वाली गायों को पुकारते हैं। तो इस तरह से 108 गायों को लेकर भगवान से कृष्ण, और एक भी गाय ऐसी नहीं कि नाम पुकारने के बाद रुको ना थोड़ा और चारा चरने दो, अभी तो टाइम नहीं हुआ, अभी खाने तो पेट भर के, लेकिन वो तुरंत कृष्ण के पुकारते ही टेर कदम पे लाइन बना के अपने अपने समूह में चलना प्रारंभ करते हैं। अब टेर कदम से नंदगांव की ओर जा रही हैं, आपने गली देखी कितनी पतली पतली है, जब उस ओर जाती हैं गाय तो पूरे में कंजेस्टेड हो जाता है, गायों के चलने के लिए जगह नहीं, इंसान के चलने के जगह नहीं, कृष्ण बीच में है। अब गोपियां दौड़ करके नंद भवन के ऊपर से भी ऊंचे ऊंचे उनके मकान है उस पर वो चली गई हैं और नंद भवन की छत पर जाकर के कृष्ण का दर्शन कर रही हैं। कह रही है नीचे तो मौका मिलेगा नहीं, सारे पुरुष हैं और गाय ग्वाले हैं, हम कहां जाएं। तो गोपियां ऊपर से जाकर के उनका दर्शन करती हैं और देखती हैं भगवान श्री कृष्ण को जो यशोदा मैया ने सुबह माला पहना के भेजा था वो अब गायों की धूल उड़ने से धूल धूसर हो गई है, पूरी माला में धूल लगी हुई है। परंतु उसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और इस प्रकार से जब कृष्ण वापस आते हैं तो दावानल शांत हो जाता है। सभी गोपियां कहती हैं चलो कृष्ण पुनः लौट आए, अब तैयारी करो, रात में क्या होगा, रास नृत्य होगा। तो इस प्रकार से गाय और सभी गाय अपने अपने गौशालाओं में चले जाती हैं और यशोदा मैया कृष्ण को ले आती हैं सुलाने के लिए। वो अलग बात है कि यशोदा के सो जाने पर कृष्ण फिर से आ जाते हैं, पर कृष्ण को प्रसाद खिलाने सुलाने, थक गए हैं मालिश करने। तो कभी कभी वृंदावन आप जाएंगे तो रात को 8:30 से 9:30 भगवान की मालिश होती है हर मंदिर में। तो कभी कभी उसको औलाय दर्शन कहते हैं। औलाय दर्शन मतलब जब भगवान के सारे वस्त्र निकाल दिए जाएंगे, लंगोटी रह जाती है बस, और फिर भगवान को ऑयल लगाकर सुगंधित तेलों से भगवान की मालिश होती है, उसे कहते हैं औलाय दर्शन। तो कभी कभी किसी किसी भाग्यशाली को वो प्राप्त होता है, वरना अधिकतर लोग 8:30 बजे दर्शन आरती करके या फिर सब मंगला आरती या संध्या आरती वापस आते हैं। परंतु वो रात्रि दर्शन है, सोने से पहले तो आप पुजारी से, हर मंदिर का अलग अलग है, किसी का 8:45 to 9, किसी का 8:30 to 8:45। तो आप पूछें औलाय दर्शन कब होगा तो बोलेंगे इतने बजे। तो वो किसी किसी को दिखाते हैं खिड़की खोल के, फिर वो भगवान की मालिश होती है। तो वो जो स्वरूप है भगवान का वो डिफरेंट है, क्योंकि फिर सुबह जब आप देखेंगे उसमें तिलक लगा दिया जाएगा, वस्त्र पहना दिए जाएंगे, तो भगवान का जो साक्षात स्वरूप है वो देख सकते हैं आप औलाय दर्शन के समान। तो ये सभी गोपियां औलाय दर्शन के लिए ललायत होती हैं, यशोदा मैया के नंद भवन में झांक झांक कर देखती हैं औलाय दर्शन हो रहा है, और उसके बाद फिर यशोदा मैया कृष्ण को सुला देती हैं। तो इस प्रकार से ये देख करके गोपियों के दावानल विरह अग्नि शांत हो जाती है। तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि पहले तो विरह उत्पन्न हो, उसके बाद विरह शांत हो। अभी तो विरह ही उत्पन्न नहीं हुआ है तो विरह शांत क्या होगा, है ना। हमें तो कभी लगता ही नहीं है कि हम भगवान को भूल गए हैं, आज भगवान के लिए कुछ नहीं किया, भगवान का स्मरण नहीं किया। तो इतने सुंदर तरीके से सुखदेव गोस्वामी ने इस अध्याय में वर्णन किया है। अगर हम बार बार यही सुनेंगे तो हम सोच सकते कृष्ण की झांकी हमारे मस्तक में, मन में बन जाए, मनोमयी हमारी झांकी मन में बन जाएगी। तो हम सब यही स्मरण करें, भगवान से प्रार्थना करें इस जन्माष्टमी कि हे प्रभु, आप जिस प्रकार से गोपियों के स्मरण में बने रहते हैं, हमारे भी स्मरण में बने रहें आपकी झांकी। ऐसे ही हम तत्पर रहें जब वृंदावन जाएं तो लस्सी पूड़ी और पेड़ा ना आकर्षित करके गोपी ड्रेस और धोती कुर्ते हमें, गोपी जो लोई बाजार आकर्षित न करके आपके ये दर्शन, आपकी ये कथाएं ललायत कर, यही